सोचता हूँ, आप जानते हैं, मेरे पास जैसे एक छोटा सा विचार है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, लोगों को खड़ा होना है, क्या आप ऐसा पसंद नहीं करते? हम प्रतिज्ञा निष्ठा को लेने के लिए खड़े होते हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं, अब हम वचन के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब हम कुछ मिनट के लिए खड़े हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक लेख को पढ़ रहा था और मैं पिछली रात्रि को लोगों के लिए सोच रहा था जो मसीह के लिए खड़े हुए थे। यदि आपने इसे नहीं किया है तो क्या आप आज इसे नहीं करना चाहेंगे? एक महान सुसमाचारक था, लगभग 75 वर्ष पहले की बात है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ वह आर्थर मैककॉय था और वो देश के उस पार गया था और एक रात उसे सपना आया था कि वह महिमा के अंदर चला गया है और वह उस फाटक के पास गया और उसने कहा, उन्होंने इसे अंदर नहीं लिया और कहा, उसने कहा, मैं आर्थर मैककॉय हूँ जो संयुक्त राष्ट्र से हूँ, मैं एक सुसमाचारक हूँ। सो द्वारपाल अंदर गया, अब यह एक सपना था और वह अंदर चला गया और कहा, मुझे आपका नाम मिला ही नहीं। उसने कहा, तो मैं एक सुसमाचारक था। उसने कहा, श्रीमान मैं। उसने कहा, तो ठीक है, क्या कोई और मौका है? वहाँ कुछ तो गलत है। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मेरे पास यहाँ पर किताब है, मैं आपके नाम को देख भी नहीं पा रहा हूँ। और उसने कहा, तो ठीक है, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम अपने मामले के लिए सफेद न्याय के सियासन पर सुनवाई कर सकते हो, परमेश्वर सहायता करना, मैं वहाँ पर नहीं होना चाहता हूँ। उसने कहा, तो ठीक है, यदि वहीं पर केवल मेरी आशा है तो फिर मैं सोचता हूँ मैं अपने मामले की सुनवाई को करूँगा। और कहा, तब उसने सोचा और वह वहाँ से दूर चला गया और बस, और जैसे ही वो बढ़ने लगा, वहाँ पर बहुत ही अंधकार था, वहाँ से प्रकाश और बढ़ता गया और प्रकाश बढ़ता गया और कहा, ये ऐसा दिखाई दिया, वहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं था कि वह प्रकाश थम जाए, लेकिन वह ठीक उसके मध्य में था। और कहा, उसने कहा, कौन मेरे न्याय के सियासन पर आ पहुँचा है? उसने कहा, मैं आर्थर मैककॉय हूँ, मैं एक सुसमाचारक हूँ, बहुत से प्राणों को उस देश में भेजा है। उसने कहा, क्या तुम्हारा नाम उस किताब पर नहीं पाया गया था? नहीं। कहा, तब क्या तुम मेरे न्यायालय में सुनवाई के लिए आए हो? जी हाँ श्रीमान, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं तुम्हें अपने नियमों के द्वारा तुम्हारा न्याय करूंगा। आर्थर मैककॉय, क्या तुमने कभी भी एक झूठ बोला है? उसने कहा, मैंने सोचा मैं बहुत ही भला व्यक्ति रहा हूँ जब तक मैं इस उजाले पर नहीं आया था। उसने कहा, लेकिन उस उजाले की उपस्थिति में मैं एक पापी था। हम उसी तरह से होंगे, अभी आप बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन रुके रहना जब तक आप वहाँ पर नहीं आते हैं। आप यहाँ पर कैसा महसूस करते हैं जब वह आपको अभिषेक कर रहा होता है? आप अपने आप को कितना छोटा महसूस कर सकते हैं, तो उस सफेद न्याय के सियासन पर क्या होगा? उसने कहा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? उसने कहा, मैं सोचता हूँ मैं तो सच्चा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों में मैं सोचता हूँ मैं छोटे छोटे सफेद झूठ को बोलता था, वे वहाँ पर बड़े और काले बन गए थे। उसने कहा, हाँ मैंने कुछ झूठ को बोला है। उसने कहा, क्या तुमने कभी चोरी की है? उसने कहा, मैं सोचता हूँ मैं बहुत ही इसके बारे में ईमानदार रहा हूँ और कभी भी चोरी नहीं की, लेकिन कहा, इस उजाले की उपस्थिति में मैं जान गया वहाँ पर कुछ तो व्यवहार करके मैंने खींचा है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैंने चोरी की है। उसने कहा, मेरा न्याय, और वह उसकी सजा को सुनने के लिए तैयार था कि उसे सनातन की आग में डाल दिया जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कहा, मेरी सारी हड्डियां थरथराने लगी थी। कहा, मैंने बहुत ही मधुर आवाज को सुना जो मेरे जीवन में मैंने कभी सुनी थी। उसने कहा, मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा, मैंने सबसे प्यारा चेहरा देखा जो मैंने कभी देखा था, माँ के चेहरे से भी प्यारा चेहरा, मेरी माँ की आवाज से भी मधुर आवाज जो हमेशा मुझे बुलाती थी। कहा, मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैंने आवाज को सुना। कहा, पिता ये सच है, उसने झूठ को बोला है और वह तब ईमानदार नहीं था, लेकिन धरती पर वह मेरे लिए खड़ा हुआ था। कहा, अब मैं उसके स्थान पर खड़ा रहूंगा। ऐसा ही है जो मैं वहाँ पर घटित होने के लिए चाहता हूँ। मैं अभी उसके लिए खड़ा रहूंगा कि जब वह समय आए वह मेरे स्थान पर खड़ा रहे। आइए उत्पत्ति 22 से पढ़ेंगे 15, 16, 17 और 18 पदों को। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ को खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा।
That in blessing I will bless thee
इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अब इन शब्दों को लेकर प्रभु और हमारे लिए सेवकाई को करें, होने पाए पवित्र आत्मा वचनों को लेकर सीधे हर एक हृदय के अंदर डाल दे, जिससे आज की दोपहर हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, क्योंकि वे बहुत ही अधिक हैं प्रभु, और आपने हमें बहुतायत से मांगने के लिए बताया है, जिससे कि हमारा आनंद पूरा हो सके। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। यदि मैं इस एक विषय को कुछ क्षणों के लिए बोलना चाहूं, मेरी आवाज थोड़ी धीमी है, इस कारण से मुझे माइक्रोफोन के पास खड़ा रहना होगा। मैं जानता हूं मेरी आवाज गूंज रही है, लेकिन हम थोड़ा सा धीरज रखेंगे। मैं इस पर बताना चाहता हूं, परीक्षा के बाद शत्रु के फाटक पर अधिकार करना। हमारा दृश्य अब्राहम के सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक में खुलता है। आप जानते हैं कि अब्राहम विश्वास योग्य का पिता था और अब्राहम को प्रतिज्ञा की गई थी, और केवल वही लोग उसके साथ वारिस हो सकते हैं मसीह में से होते हुए। केवल वही वह तरीका है हम प्रतिज्ञा को पाते हैं, वह अब्राहम के जरिए से है। अब अब्राहम एक साधारण सा मनुष्य ही था, लेकिन वह परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था और वह उस बुलावट के प्रति विश्वास योग्य था। जब परमेश्वर ने उसे बातें की, अब्राहम ने कभी एक बार भी उसकी आवाज पर संदेह नहीं किया। वह ठीक उसके साथ बना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या परेशानियां थी, वो ठीक इसके साथ बना हुआ था। और तब उसे एक पुत्र की प्रतिज्ञा दी गई थी और वह 25 वर्षों तक उस पुत्र को पाने के लिए रुका रहा। कोई भी इसके विरोध में आने दो, हालांकि यह इसी तरह से था। और बाद में इस पुत्र में धरती के सारे परिवार आशीषित होने थे, और यह महान व्यक्ति उसकी बुलावट और प्रतिज्ञा वचन के प्रति विश्वास योग्य था। वह उसका एक उदाहरण था कि हमें क्या होना चाहिए। अब हम मसीह में मरे हुए हैं, हम अब्राहम के बीज हैं। अब वहाँ पर दो अब्राहम के बीज थे, उसमें से एक स्वाभाविक बीज था और दूसरा एक आत्मिक बीज था। उसमें से एक उसके शरीर के द्वारा स्वाभाविक हुआ था और दूसरा एक उसके विश्वास का बीज था, वह विश्वास जिससे अब हम प्रतिज्ञा वचन के द्वारा अब्राहम के बीज बन सकते हैं। और अब उसकी 25 वर्षों की लंबी परीक्षा के बाद ऐसा हुआ था, और वह कमजोर होने के बजाय वह मजबूत होता गया। देखो, यदि यह पहले वर्ष में नहीं हुआ, अगला वर्ष ये और अधिक अद्भुत होगा, क्योंकि वहाँ पर वो 2 वर्ष हो गए थे। और वो उन वर्षों में बढ़ता गया, जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया और उसका शरीर मुरझाने लगा था और सारा का गर्भ, वो गर्भ या ये बंजर हो गया था, और इसीलिए उसकी सारी शक्ति चली गई थी, और वहाँ यह पूरी तरह से असंभव बात थी। क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया? देखो, उसने अधिक कुछ भी नहीं, केवल उसके गर्भ को उपजाऊ बनाया। क्योंकि याद रखना, यदि उसने ऐसा किया, तब याद रखना, यदि उसने ऐसा किया, उनके पास उन दिनों में सेहत और स्वास्थ्य बनाने की बोतलें नहीं होती थी। बालक को देने के लिए गाय का दूध था, समझे? उसे यह भी, उसकी दूध की नसें सूख गई थी, इसलिए वो वहाँ पर कुछ तो घटित होने जा रहा था। तब इस एक महिला की ओर देखें, 100 वर्ष की आयु, 100 प्रसव वेदना के अंदर जा रही थी, उसका हृदय इसके लिए तैयार नहीं होगा। आज ये 40 वर्ष की महिला के लिए करना बहुत ही कठिन है, उसका हृदय इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। तो आप जानते हैं उसने क्या किया? यदि आप ध्यान से देखें, अब मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्या यह बयान देना ठीक होगा? देखो, मैं ये मेरे खुद के विचार होंगे। देखो, बाइबल एक अलौकिक किताब है, यह इस तरह से लिखी गई है जो कि धर्म विद्यालयों से और धर्म ज्ञानियों से छिपी हुई है। कितने लोग ये जानते हैं? यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा कर रखा और इसे बालकों पर प्रकट किया जो सीखना चाहते हैं। यह एक प्रेम की किताब है। जब परमेश्वर का प्रेम हृदय में आता है तब आप परमेश्वर के साथ प्रेम करने लगते हैं। तब वह अपने आप को प्रकट करता है, जो बाइबल का अर्थ है। बाइबल का अनुवाद परमेश्वर स्वयं उसकी प्रतिज्ञाओं को अनुवाद कर रहा है, लेकिन बाइबल यह लकीरों के बीच में लिखी हुई है। अब जैसे मेरी पत्नी, ओह वो सारी दुनिया में सबसे अच्छी महिला है और मैं सचमुच उससे प्रेम करता हूँ, वह मुझसे प्रेम करती है। सो जब मैं अपने घर से दूर रहता हूँ वह मुझे एक पत्र लिखती है, प्रिय बिल, आज रात मैंने अभी अभी बच्चों को सुलाया है, मैंने आज कपड़े धोए और जो कुछ भी उसने किया है और इत्यादि। अब वह पत्र पर कुछ कह रही है, लेकिन आप देखना मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और हम पूरी तरह से एक हैं, इतना तक कि मैं लकीरों के बीच में पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह क्या कहना चाहती है। देखो वह चाहे मुझे बताए या न बताए, देखो मैं जानता हूँ उसका क्या अर्थ है, क्योंकि यह मेरा उसके प्रति प्रेम है और मेरी समझ है। तो इसी तरह से बाइबल लिखी हुई है, समझे। वे जो धर्म ज्ञानी है ये सीधे उनके ऊपर से निकल जाता है, वे इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। देखो आपको वचन के साथ और उसके साथ प्रेम में पढ़ना होगा और उसे जानना ही, समझे। अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया। अब अब्राम और सारा दोनों ही बूढ़े थे, बाइबल कहता है आयु में अधिक। अब यह केवल ऐसे नहीं था क्योंकि वे वहाँ बहुत लंबे समय तक लोग जीते थे, बाइबल ने कहा वे आयु में अधिक थे। अब ध्यान देना, दूत के उपस्थित होने के तुरंत बाद ही हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो एलोहिम था, परमेश्वर, और उसने कहा अब्राहम को बताया, मैं जीवन के समय के अनुसार तुमसे मुलाकात करूंगा। अब ध्यान देना, वहाँ से लेकर नीचे तक वे एक कलीसिया का नमूना रहे थे, वहाँ से लेकर आगे होते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या घटित हुआ था। अब उसने ऐसे ही सारा पर ऊपरी ऊपर से काम नहीं किया, ऐसे ही अब्राहम पर ऊपरी ऊपर से काम नहीं किया, उसने उन्हें एक जवान पुरुष और महिला में बदल दिया। अब यह हो सकता है कुछ विचित्र सा लगे, लेकिन आप बाकी के वचन को देखें और इसे एक साथ जोड़ लें। वो वचन प्रेरित करता है और आपको वचन के साथ प्रेरित होना है। अब याद रखें, इसके तुरंत बाद ही, इस दूत के उपस्थित होने के तुरंत बाद, मैं इसे तब सारा के सफेद बालों को देख सकता हूँ, छोटी दादी माँ अपने कंधों पर शाल को ओढ़े हुए और एक धूल से भरी हुई टोपी हाथों में लकड़ी लिए हुए यहाँ वहाँ जाती है। क्या मुझे मेरे स्वामी से सुख प्रदान होगा, और वह भी बूढ़े हैं, समझे। और यहाँ पर अब्राहम था, लंबी सी दाढ़ी, हाथ में छड़ी लिए हुए, वो ऐसे ही था, वो आयु में अधिक था। और मैं देखता हूँ अगली सुबह को उसके कंधे ऊपर की ओर सीधे होने लगे, उसकी पीठ का कुबड़ सही होने लगा और उसके बाल बदलने लगे, वे वापस एक जवान पुरुष और महिला बन गए थे। यह तो बस यह दिखाता है कि वह अब्राहम के शाही बीज के लिए क्या करने जा रहा है। देखो जब हम पलक झपकते ही पल भर में बदल जाएंगे और एक साथ उठा लिए जाएंगे। ध्यान देना क्या हुआ था। अब मैं आपको इसे साबित करूंगा। अब वे जहाँ पर थे उस स्थान से यात्रा पर निकले थे, वहाँ अमोरा के लिए, और वहाँ से दूर गरार की ओर गए, वहाँ नीचे फिलिस्तीनी देश में। क्या आपने ध्यान दिया, नक्शे पर देखना ये कितना दूर है। उस उम्र के जोड़े के लिए ये काफी लंबी यात्रा है। और फिर इसके बावजूद उस फिलिस्तीनी देश में वहाँ पर एक अबीमेलेक नाम का जवान राजा था, और वह एक पत्नी के लिए देख रहा था, और उसके यहाँ वे सारी सुंदर फिलिस्तीनी लड़कियाँ थी। लेकिन जब उसने दादी माँ को देखा, उसने कहा वह दिखने में सुंदर है, और उससे प्रेम करने लगा, और वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। यह सही है, देखो वो बहुत ही सुंदर थी, समझे। वह एक जवान स्त्री में बदल गई थी। ध्यान देना, उसे होना था ताकि उस बालक को लेकर आए, और परमेश्वर ने उसे एक नई सृष्टि बनाया, और उसे होना था इस बालक को पालने के लिए। और याद रखना, अब्राहम, उसका शरीर लगभग निर्जीव था, और सारा मर गई जब इजाक 45 वर्ष की उम्र का था। और मैं सोचता हूँ जब सारा मरी थी और अब्राहम ने एक और स्त्री से विवाह किया, और उसके 7 पुत्रों के अलावा पुत्रियाँ थी। आमीन। देखो लकीरों के बीच में पढ़ लेना, यह एक प्रतीक है, यह दिखाता है कि वो सारे अब्राहम के संतानों के साथ क्या करने जा रहा है। हम बस इसके नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमारे झुके हुए कंधे और इत्यादि, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मित्रों, और हमारे सफेद बाल और जो कुछ भी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, आइए हम आगे देखें कि हम क्या होने जा रहे हैं। और याद रखना, यह चिन्ह जिसे हम देख रहे हैं वो अंतिम चिन्ह था जिसे अब्राहम और सारा ने देखा, इससे पहले कि प्रतिज्ञा का पुत्र अस्तित्व में आए। हम विश्वास करते हैं हम उसी घड़ी पर हैं। वो महान व्यक्ति इस पुत्र के जन्म के बाद, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इजहाक लगभग 20 वर्ष की उम्र का प्यारा सा लड़का था, घुंघराले बालों वाला लड़का, छोटी बुरी आंखें। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उसकी माँ ने कैसा महसूस किया होगा। वो सुंदर जवान महिला और ऐसे ही उसका पिता था। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, अब एक उदाहरण के लिए हम दूर आ चुके हैं, वो घड़ी आने पर है, मैं तुम्हें इस लड़के के जरिए से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उस लड़के को लेकर उस पहाड़ के ऊपर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहाँ पर एक बलिदान करके मार डालो। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? अब आपको इस तरह की परीक्षा के लिए नहीं कहा जाएगा। वह अभी ऐसा नहीं करता है, वह तो उदाहरण थे, परछाइयां थी। क्या अब्राहम डरा? नहीं श्रीमान, अब्राहम ने यह कहा, मैं पूरी तरह से मान लेता हूँ कि वह उसे मुर्दों में से जिलाने के लिए सक्षम है, क्योंकि मैंने उस एक को मृत में से पाया है, और यदि ये परमेश्वर की आज्ञा मुझे इसे करने के लिए कहती है तो मैं इसके साथ सच्चा बना हुआ हूँ और इसकी भरपाई हो चुकी है। मेरे पास ये बालक होने के लिए परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाने के लिए सक्षम है, जिससे यह मुझे मिला है, एक चिन्ह की नाई। ओह मेरे दोस्तों, यदि परमेश्वर आप पेंटिकॉस्टल्स को पवित्र आत्मा देता है, अन्य भाषा में बोलना कितना अधिक आपको उसकी चंगाई की सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए और उसकी भलाई और करुणा के लिए। यदि उसने इसी देश के सारे धर्म ज्ञानियों के विरोध में किया, उन्होंने कहा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने इसे किया क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, तब मैं आपके बंदूक का सामना करूंगा, आपके शब्दों का, आपकी तलवार का। मैं परमेश्वर के वचन को विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे कहा है और यह ऐसा ही है। ध्यान देना, वो उसे खच्चर पर वहाँ से 3 दिन की यात्रा करके ले गया। अब मैं जा सकता हूँ, जब मैं गाड़ियों में जाता हूँ, मैं 30 मील रोज जंगलों में से होते हुए गाड़ी चलाता था, और हमारे पास गाड़ियों के पाँव है ऐसे ही बोलने के लिए, लेकिन उन मनुष्यों के पास केवल जो यहाँ से वहाँ जाने का साधन था, या तो एक गधे में सवारी करना या फिर पैदल चलना। वह जहाँ था वहाँ से लेकर वह 3 दिन की यात्रा करके वहाँ पर गया था, और फिर उसने वहाँ जंगल में अपनी आँखों को ऊपर उठाया और दूर पहाड़ की ओर देखा। उसने इजाक को लिया और उसके हाथों को बांध दिया, जो हम सब जानते हैं यहाँ उत्पत्ति 22 में है, जो एक मसीह का प्रतीक है। उसे पहाड़ की ओर उसकी अगुवाई की बंधा हुआ, जैसे यीशु को ऊपर पहाड़ पर जाने की अगुवाई हुई, कलवरी के पहाड़ पर एक परमेश्वर का प्रतीक जो पुत्र को दे रहा है निसंदेह। लेकिन जब वे वहाँ पर गए और वह आज्ञाकारी था, इजाक संदेह में था, उसने कहा, पिता यहाँ पर लकड़ी है, यहाँ पर वेदी है, यहाँ पर आग है, लेकिन बलिदान कहाँ पर है? और अब्राहम, जो अपने मन में जानता था, अब भी परमेश्वर का वचन वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने कहा, मेरे पुत्र परमेश्वर खुद के लिए एक बलिदान का प्रयोजन कर सकता है। उसने उस स्थान को यहोवा यीरे कहा। और जब उसने उसके पुत्र को बांधा, वह मृत्यु तक आज्ञाकारी था, उसे वेदी पर लिटा दिया, उसने मयान में से चाकू को निकाला और अपने खुद के पुत्र का जीवन लेने लगा। और जब ऐसा किया, किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, अब्राहम अपने हाथ को रोक दो, और उस समय पर उसके पीछे मेंढा मिमियाने लगा, झाड़ियों में उसके सींग फंसे हुए थे। क्या आपने कभी सोचा कि वह मेंढा कहाँ से आया था? याद रखना, वह देश शेरों से, भेड़ियों से, गिद्धों से, भेड़ों के नरभक्षी पशुओं से भरा हुआ था, और वो रोजाना जीवन से कितना दूर था, अंसारी जाति। और तब वहाँ उस पहाड़ के सबसे ऊपर, जहाँ पर कहीं भी कुछ भी जल नहीं था, उसने यहाँ वहाँ से पत्थरों को उठाया कि वेदी को बनाए। वह मेंढा कहाँ से आया था? देखा, लेकिन यह एक दर्शन नहीं था, उसने मेंढे को मारा, उसके पास लहू था। उसने क्या कहा? परमेश्वर खुद के लिए एक बलिदान का प्रयोजन कर सकता है। कैसे आप कुर्सी पर से चंगाई पाकर खड़े होंगे? कैसे वह मंद बुद्धि बालक चंगा होगा? या आप एक कुर्सी पर से, आप वहाँ से, आप जो एक हृदय रोगी हैं, जो कुछ भी आपकी समस्या है, परमेश्वर खुद के लिए प्रयोजन करने में सक्षम है। अब्राहम ने उसका विश्वास किया, वह मान व्यक्ति प्रतिज्ञा के लिए सच्चा बना रहा। वह प्रतिज्ञा को देता है कि तेरा बीज, क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास किया है, परवाह नहीं करते हुए कि परिस्थिति जो भी होने दो, तेरा बीज उसके शत्रु के फाटक पर अधिकार करेगा। क्यों? हर एक शत्रु जो आता है एक बड़ी संख्या में अब्राहम के विरोध में, वो शत्रु, वह बहुत ही बूढ़ी है, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, और ऐसा सब है, जो कुछ भी है वह ठीक उस प्रतिज्ञा के साथ अब भी सच्चा बना हुआ था। अब मनुष्य जो उस विश्वास को रखता है, परिस्थितियों की परवाह नहीं करते हुए, वो अब भी परमेश्वर के वचन को लेगा। अब यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब आप अब्राहम के बीज नहीं है। यही वो विश्वास है जो अब्राहम के पास था, उसका बीज। अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा थी कि उसका बीज अब जो उसका शाही बीज भी है, जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, और यह मोहर जो वह अब्राहम को देता है एक प्रतिज्ञा की मोहर थी, और वह शाही बीज इफिसियों 4:30 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद है। जब भी परीक्षा के बाद वे खड़े होते हैं, इस पर सोचने का यत्न करें। बहुत से लोग सोचते हैं उनके पास पवित्र आत्मा है, बहुत से लोग पवित्र आत्मा के होने का दावा करते हैं, बहुत से लोग प्रमाण और इसके चिन्हों को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी यदि वे वचन के साथ बने नहीं रह सकते हैं, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। देखा, आप हर एक वचन पर विश्वास करते हैं, तब आप परीक्षा के बाद मोहर बंद होते हैं। जब हम वचन में की हर एक प्रतिज्ञा को विश्वास करते हैं, तब हम आत्मा के द्वारा मोहर बंद होते हैं, प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए। यही है जो अब्राहम जिस तरह से उसने इसे किया था। उसके बाद और केवल उसके बाद ही हम ठीक हमारे शत्रु के फाटकों पर अधिकार रखते हैं। आप इसे नहीं कर सकते हैं जब तक आप वह बीज नहीं बनते हैं। याद रखना, बाइबल में मैंने इस पर बताया है, हॉस्टन या कहीं और जगह पर, या दूसरी, या मेरा मतलब है डल्लास पर, संदेश चिन्ह पर। देखो, एक यहूदी वहाँ इसराइल में दिखा सकता है कि खतने के द्वारा वो एक यहूदी था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब मैं लहू को देखूंगा और लहू आपके ऊपर एक चिन्ह होगा। वह जीवन जो लहू में था, वह आराधना करने वालों के ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि यह तो जानवरों का जीवन था, यह केवल आने वाले वास्तविक जीवन की छाया थी। तब वो रसायन, लहू खुद दरवाजे के ऊपर लाल रंग होना था, और उस दरवाजे की चौखट पर होना था, जूफा से लगाना था, जो कि एक आम घास थी। यह दिखाता है कि यह होने के लिए आपके पास सर्वोच्च विश्वास नहीं होना है, आपके पास उसी तरह का विश्वास होना है। वो विश्वास आपके पास होता है जैसे आपको एक कार को चालू करके कलीसिया में आने का विश्वास होता है। समझे, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ तो बनना है, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपके पास लोगों को लगाने के लिए केवल साधारण सा विश्वास ही होना है। वचन को सुने और वचन पर विश्वास करें, इसे लगाएं, बस इतना ही है। फिलिस्तीनी देश में कहीं से भी केवल आम घास को ले लें जो जूफा था, बस एक छोटी सी घास को लें, और जो यहाँ वहाँ उन दीवारों की दरारों से उगकर बाहर आती है, उनके लहू में डुबाकर और इसे चौखट पर और दरवाजे के ऊपर लगाना है। और याद रखना, मैं परवाह नहीं करता हूँ वे कितनी वाचा में थे, कितना भी यहूदी बताने दो कि उनका खतना हुआ है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति रहा था। सारी वाचाएं निष्फल थी जब तक वहाँ पर लहू नहीं होता है। जब मैं लहू को देखूंगा, केवल वही। अब वो लहू, अभी वो चिन्ह रसायन नहीं है, मसीह के लहू का रसायन, क्योंकि इसे हजारों वर्ष पहले बहाया गया था। लेकिन आप देखना, वहाँ पर रसायन को होना है, उन जानवरों का जीवन मनुष्य के ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि जानवरों के जीवन के पास एक प्राण नहीं होता है। वो जानवर नहीं जानता कि गलत से लेकर सही क्या होता है, यह मनुष्य जाति है जिसके पास एक प्राण है। अब लेकिन जब यीशु परमेश्वर का पुत्र, जो कुंवारी से जन्मा, उसके लहू को बहाया, वो जीवन जो उस लहू में था खुद परमेश्वर था। बाइबल ने कहा, हम जीवन के द्वारा बचाए गए हैं, जो परमेश्वर का लहू है, एक यहूदी का लहू नहीं, ना ही एक अन्य जाति का लहू, लेकिन परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर ने इस लहू के कण की सृष्टि की, कुंवारी से जन्मा, वो कभी किसी पुरुष को नहीं जानती थी, ना ही वो अंडाणु कभी उसमें से आया था। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग विश्वास करना नहीं चाहते हैं कि अंडाणु ने किया। वहाँ पर बिना एक अनुभूति के अंडाणु नहीं हो सकता है। तब परमेश्वर क्या करता है? देखा, उसने लहू और अंडाणु दोनों की सृष्टि की और यही परमेश्वर का भवन था। पवित्र, मैं अपने पवित्र जन को सरते हुए नहीं देखूंगा। देखो, वो अंडाणु कहाँ से आया? ना ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। उसका शरीर पवित्र था। ओह प्रभु, आप नहीं, आप इसे विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे अपने आप को एक मसीह कहकर बुला सकते हैं? हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, यहीं पर मेरा विश्वास है। हम ना ही एक नबी के लहू के द्वारा वहाँ पर चलकर जाते हैं, ना ही एक साधारण मनुष्य के लहू के द्वारा वहाँ पर चलकर जाते हैं, या एक शिक्षक या एक धर्म ज्ञानी के लहू के द्वारा। हम वहाँ पर परमेश्वर के लहू के द्वारा चलते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वह मनुष्य जाति बन गया, उसने उसके गुण को बदल दिया, उसने हमारे साथ यहाँ पर अपने तंबू को तान दिया और हम में से एक बन गया। वो हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी है। उसे हमारा कुटुम्बी बनना था, क्योंकि ये नियम था। परमेश्वर मनुष्य बन गया और हमारे बीच में रहा। ध्यान देना, कैसे इसे करते हुए वह उसमें से आ रहा है जो परमेश्वर था। वो आत्मा, और वह आत्मा विश्वासियों के ऊपर आती है। इसलिए वह जीवन जो कि हमारे उस बलिदान में था, हम उसी जीवन के द्वारा पहचाने जाते हैं। तब वे परमेश्वर के जीवन को कैसे लोगों के बीच में चलता फिरता देख सकते हैं और इसे अशुद्ध चीज कहकर बुलाते हैं? कब हमारी इसी बलिदान की पहचान होती है? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे। उसका जीवन उस बलिदान से वापस आ रहा है, और जब हम इस पर अपने हाथों को रखते हैं और हमारे खुद के विचारों के लिए मरे होने की पहचान को देते हैं, तब भला कैसे हम खुद को संप्रदायों को हमें मतों और इत्यादि के अंदर डालने दे सकते हैं और कहें कि हम इसे विश्वास करते हैं? हम उन चीजों के लिए मरे हुए हैं। पौलुस ने कहा, इसमें से किसी बात से भी मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि वह एक परम सत्य से जुड़ा हुआ था जो मसीह है। और हर एक सच्ची सफलता एक परम सत्य के साथ जुड़ी होती है, और मेरा परम सत्य वचन है। और हर एक जन, कोई भी है जो वास्तव में आत्मा से जन्मा है, उनका परम सत्य परमेश्वर का वचन है। मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने हाथों को इस पर रखा है और इसने मेरे स्थान को लिया है, और मैंने अपनी खुद की पहचान उसके साथ दी है। हम जानते हैं कि उसने हमारे साथ खुद की पहचान देने की प्रतिज्ञा की है, और सच्चे विश्वास को लाता है। न ही हमारा खुद का विश्वास, लेकिन उसका विश्वास। कुछ तो ऐसा जो आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वह इसे करता है। अब ध्यान देना, तब और केवल तब वही प्रतिज्ञा आपके साथ की जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कलीसियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी बार आपने बपतिस्मा लिया है, आगे की तरफ झुककर, पीछे की तरफ, कहीं भी, जहां आप चाहें। जब तक कि वह मोहर आप पर नहीं पाई जाती, तब तक आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप खुद को अपने उस बलिदान के साथ जुड़ा हुआ बताएं। और परमेश्वर की मोहर क्या है? इफिसियो 4:30 कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। न ही एक बेदारी से दूसरी बेदारी, लेकिन वो उस दिन के लिए अनंतता की मोहर है, जब आप वापस छुड़ाए हुए वापस जाते हैं। और याद रखना, यदि आप परमेश्वर के विचारों में कभी नहीं थे, तो आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं होंगे। कितने लोग ये जानते हैं, वह एक छुड़ाने वाला था। तो फिर हर एक चीज जो छुड़ाई गई है, उसे वापस आना है जहाँ से वह गिरी है। इसलिए यदि वह हमें छुड़ाने के लिए आया है, तो हम कैसे छुड़ाए जा सकते हैं? हमें एक समय छुड़ाए जाने की जरूरत नहीं थी, और हम सब पाप में जन्मे और अधर्मता में गर्भ में पड़े और झूठ बोलते हुए संसार में आए हैं। यह दिखाता है कि वो सच्चा मसीही परमेश्वर के विचारों का एक गुण है। इससे पहले कि संसार हो, तारा हो, या वायु हो, या जो कुछ भी हो, यह अनंत कालिक है, और वह हमें वापस छुड़ाने के लिए आया है। यह परमेश्वर के विचार है जो शब्द के अंदर बोले गए और प्रकट बने, और उसके विचार वापिस लाया। छुड़ाने वाला निकट कुटुम्बी, इसी कारण से परमेश्वर को छुड़ाने के लिए हम में से एक बनना था। कोई भी और इसे नहीं कर सकता है, एक दूत इसे नहीं कर सकता है, कोई भी और नहीं, उसे नीचे उतर कर आना था, उसकी परीक्षा होनी थी जैसे हमारी होती है, ताकि हमें छुड़ाए। अब अब्राहम के स्वाभाविक बीज को ध्यान दें, आइए कुछ स्वाभाविक बीज को जांचें और देखेंगे यदि परमेश्वर उसके वचन को स्वाभाविक बीज के साथ रखता है जो इजाक था। आइए कुछ स्वाभाविक बीज को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था और उनके पास कोई प्रश्न नहीं थे। अब याद रखना, वहाँ पर हजार गुना हजार, हजार गुना हजार, इससे हजारों से आप गुना करें जो खतना किए हुए थे, और वे जो कोई भी थे और फिर भी अब्राहम के बीज नहीं थे। निश्चय ही, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं, यहूदी वही है जो मन में है। उनमें से बहुत से लोग चूक गए, वे उनमें से बहुत से पूरी तरह से चूक गए थे। देखो जंगल में उन्होंने कहा, हम उस पर्व के दिन पर या उस सोते से जल पीते हुए संत यूहन्ना 6, वे सब आनंद कर रहे थे। यीशु ने कहा, मैं वह चट्टान हूँ जो उस जंगल में थी, मैं वह स्वर्ग से उतरी हुई परमेश्वर की रोटी हूँ, यदि कोई मनुष्य खाता है वह कभी न मरेगा। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में 40 वर्षों तक मन्ना खाया। उसने कहा, और उनमें से हर एक जन मर गए। मरना, इस शब्द को लेकर और इसे समझें, देखें कि इसका क्या मतलब होता है, अनंतता के लिए अलगाव होना। फिर भी वे अब्राहम के बीच थे। मरना का मतलब होता है सर्वनाश, अलगाव, पूरी तरह से नाश हुआ, सर्वनाश। यीशु ने कहा, उनमें से हर एक जन मर गए, फिर भी वह खतना किए हुए यहूदी थे। देखो बेचारे वे लोग, क्योंकि हम केवल मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, एक छोटे से अंगीकार को करते हैं और इसी तरह की चीजों को, शैतान बिल्कुल उतना ही विश्वास करता है जितना हम करते हैं। लेकिन आपको इसके साथ पहचान देनी होगी। परमेश्वर इसके लिए इसकी गवाही को देता है पवित्र आत्मा से मोहर बंद करने के द्वारा। वचन के लिए कोई प्रश्न नहीं होता है। यदि आप कहते हैं तो ठीक है, अब ये किसी और दिन के लिए है, वहाँ पर कुछ तो गलत है। क्या हो यदि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आए और उस व्यक्ति को बताए कि वो प्रकाश चमक रहा था, और वह दौड़कर नीचे तहखाने के अंदर चला जाता है, कहे मैं बस इसे इनकार करता हूँ, मैं बस इसे इनकार करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई प्रकाश नहीं है, मैं इसे विश्वास नहीं करता, वहाँ उस मनुष्य के साथ कुछ तो गलत है, वो दिमागी रूप से परेशान है। यदि वह इसकी गर्म किरण को इनकार करता है और इसके जीवन देने के स्तोत्र को इनकार करता है, तो वहाँ पर कुछ तो उसके साथ दिमागी रूप से गलत है। और जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को देखता है और उसके सामने स्पष्ट बनता है और पहचान देता है, और बाद में वो मनुष्य उसके संप्रदाय के पर्दे को नीचे खींच लेता है, उस मनुष्य के साथ आत्मिक रूप से कुछ तो गलत है, उसके साथ कुछ तो गलत है, उस मनुष्य के साथ आत्मिक रूप से कुछ तो गलत है, वह बस इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, अंधा है और इसे नहीं जानता, वह न्याय के लिए जा रहा है और परमेश्वर उसका न्यायी होगा। ध्यान दें, जब उन्होंने इसे किया और ये बीज जिन्होंने इसे विश्वास किया, देखना कि क्या घटित हुआ था। अब आइए उनमें से कुछ को जांचेंगे जो अब्राहम के बीज हैं। आइए इब्रानी बच्चों को लें, क्योंकि वे सच्चे खड़े रहे और उन्होंने उस मूर्ति की आराधना को सहन नहीं किया। उन्होंने एक मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया जिसे उस देश के राजा ने बनवाई थी। यह एक पवित्र व्यक्ति की बनी हुई थी जो दानियल की मूर्ति थी। यह दिखाता है कि अन्य जाति की पीढ़ी को एक गलत दिशा के नीचे लाया गया था, जो पवित्र मनुष्य की मूर्ति की आराधना करना था। यह उसी तरह से होता जाता है जब लोगों को मनुष्य की मूर्तियों के आगे झुकने के लिए दबाव डाला जाएगा। यह उस प्रकाशन के द्वारा अंदर आया जिसका दानियल वचन का अनुवाद कर सका था, जो दीवार पर हस्तलेख की लिखावट थी। इसी प्रकार से यह अंदर आया और उसी प्रकार से यह बाहर चला जाता है, जो अन्य जाति की मूर्तियां हैं। ध्यान दें, उन्होंने इसे करने से इनकार किया, और उन्होंने क्या किया था? अब्राहम का बीज वचन के प्रति सच्चा बनकर खड़ा हुआ था, और उन्होंने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया था, उस आग का। उन्होंने इसे किया तो परमेश्वर का वचन सच्चा है। दानियल की एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करने पर परीक्षा ली गई थी, उसकी इसके लिए परीक्षा की गई थी, और उस परीक्षा के समय पर वो खड़ा रहा। और परमेश्वर ने क्या किया उसके बाद? ऐसा दिखाई दिया कि यह उसके लिए मुश्किल है, जैसा कि हम कहेंगे, और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है। वे उसे सीयों को खिलाने जा रहे थे, लेकिन दानियल परीक्षा में सच्चा बना रहा कि वहाँ पर एक सच्चा परमेश्वर है, और उसने उसके शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। परमेश्वर ने सीयों के मुंह को बंद कर दिया। मूसा उस परीक्षा में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा बना रहा यरनेस और जमरेस के गलत अनुवादों के सामने। देखो, परमेश्वर ने उससे मुलाकात की अलौकिक के साथ, उसे बताया कि जाकर इन चीजों को करे, उन चिन्हों को दिखाता है और हर एक चिन्ह के पास एक आवाज होगी। मूसा सीधा आगे निकल गया, बिल्कुल वैसा ही सच्चाई से जितना वह जानता था। उसने छड़ी को नीचे फेंका और वो एक सर्प के अंदर बदल गई। आप जानते हैं कि क्या हुआ, और यहाँ पर नकल करने वाले आकर और उसी चीज को करते हैं। अब मूसा ने अपने हाथों को पीछे नहीं हटाया, कहा मैं तो सोचता हूँ ये सब गलत है। वह वहाँ बना रहा और परमेश्वर पर रुका रहा, वह सच्चा बना रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने नकल करने वाले थे, वह सच्चा बना रहा। और जब वह उसके कार्य आदेश के लिए सच्चा बना रहा, जिससे कि उन लोगों को उस स्थान से बाहर निकाले, जब उसके मार्ग पर एक जल का फाटक आ गया, परमेश्वर ने उसे इस पर अधिकार दिया और उसने पवित्र आत्मा के स्तंभ के द्वारा उस फाटक को खोल दिया जो उसकी अगुवाई कर रहा था। वो लोगों को प्रतिज्ञा देश की ओर लेकर गया। यहोशू एक और महान अगुवाई करने वाला, केवल दो ही उनमें से उस प्रतिज्ञा देश के अंदर गए थे, यहोशू और कालिब। वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे कारदेश कहा जाता था, जो उस समय पर संसार के मध्य में था, यहाँ तक कि यह न्याय का आसन था। और उन्होंने उस देश को देखने के लिए वहाँ पर 12 भेदियों को भेजा, और वे 12 वापस आए। उनमें से 10 ने कहा, ओह यह बहुत कठिन काम है, हम बस इसे नहीं कर सके। तो वे लोग उन लोगों के सामने हम टिड्डिया जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन यहोशू ने क्या किया, उसने लोगों को शांत किया। उसने कहा, एक मिनट रुकना, हम इसे लेने में इससे भी ज्यादा सक्षम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने छोटे हैं या हमारी संख्या कितनी कम है। वह क्या कर रहा था, वह उस प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा खड़ा हुआ था। मैं तुम्हें इस देश को देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके हर एक इंच के लिए लड़ना होगा। क्या आप माताएं यह विश्वास करती हैं, परमेश्वर आपको चंगाई को दे चुका है, लेकिन आपको इसके हर एक इंच के लिए लड़ना होगा। जहाँ कहीं भी तेरे पांव के कदम पड़ते हैं, मैं तुम्हें उस पर अधिकार को देता हूँ। पद चिन्ह इसका मतलब होता है अधिकार। यह सब तुम्हारा है, हर एक प्रतिज्ञा तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें मार्ग के हर एक इंच में अब लड़ना होगा। अब यहोशू जान गया कि परमेश्वर ने क्या कहा। वह एक अब्राहम का बीज था, समझे। उसने कहा, मैं इसे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें देश को दे दिया है और हम इसे लेने में सक्षम है। और क्योंकि वह परीक्षा में बना रहा, सारे इसराइलियों के झुंड के विरोध में सारी जातियों के और सारे लोग शिकायत करने लगे और चिल्लाने लगे। यहोशू ने कहा, शांत रहो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कितने बड़े हैं, और कोई भी विरोधी होने दो, और डॉक्टर ने क्या कहा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दिया है। यह परमेश्वर पर है कि इसे करे। उसने क्या किया, जब वह यर्दन नदी के किनारे पर आया, उसने फाटक पर अधिकार किया। यही है जो उसने किया था। येरियो बंद किया गया जैसे कछुआ खोल में छुप जाता है। उसने क्या किया, उसने फाटक पर अधिकार किया। हर एक दिन जब उसका शत्रु उसे लेने की कोशिश कर रहा था, उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया, इतना तक कि उसने सूर्य को रुकने की आज्ञा दी, और सूर्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया और 24 घंटों तक जरा भी नहीं घूमा। परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या भी करना पड़े, इससे पहले कि उसका वचन चूके, वह स्वर्ग को खाली कर देगा। वो कभी भी एक प्रतिज्ञा को नहीं करेगा जिसे वो पूरा नहीं कर सकता है। मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। यदि वे विश्वास कर सकते हैं, सारी बातें संभव है। यहोशू ने इसे विश्वास किया, हालांकि परमेश्वर ने उस पृथ्वी को घूमने से रोक दिया था। वहाँ पर कुछ ऐसी सामर्थ्य के द्वारा इसे थाम लिया जो उसकी खुद की सामर्थ्य थी, कि संसार 24 घंटों तक कभी भी नहीं घुमा था, जब तक कि यहोशू ने खुद उसके शत्रु पर प्रतिशोध को नहीं ले लिया। उसने फाटकों पर कब्जा कर लिया, निश्चय ही उसने किया था। परमेश्वर हमेशा ही सच्चा होता है। अब मैं चाहता था हमारे पास समय होता था तो हम कुछ और शूरवीरों को लेते, लेकिन मेरे पास अब 10 मिनट हैं। देखो, वे सारे बहुमूल्य शूरवीर के जैसे थे, और वे महान विश्वास के योद्धा। वे सारे उस मृत्यु के फाटक पर मर गए। वे सारे ठीक मृत्यु के फाटक पर खत्म हो गए। उसके बाद वहाँ पर आगे अब्राहम का शाही बीज आता है। वे सारे इज़ाक से लेकर सभाई बीज थे, लेकिन यहाँ पर अब्राहम का शाही बीज आता है जो मसीह था। अब्राहम के विश्वास का बीज हमें जो होना चाहिए, हमें तो केवल देखना है कि हम बीज हैं या नहीं है। वो स्वाभाविक बीज केवल एक प्रतीक था, उन सारे दूसरों का स्वाभाविक जन्म हुआ था, लेकिन वो एक कुंवारी से जन्मा था। देखो, वह तब अब्राहम का बीज नहीं था, एक यहूदी। वो प्रतिज्ञा के विश्वास के बीज के द्वारा आया, और तब हमें इस मनुष्य के जरिए से उसकी संतान होना चाहिए। ध्यान देना, उसने क्या किया जब वो धरती पर था। उसने हरेक शत्रु के फाटक पर जय पाई और अधिकार किया। उस शाही बीज ने, उसने वचन के द्वारा इसकी प्रतिज्ञा की, उसने इस पर जय पाई। उसने बीमारी के फाटक पर हमारे लिए जय को पाया। यही है वो जिसे वो करने के लिए आया था। उसने, याद रखें, जो बीमार लोग हैं, उसने उस फाटक पर जय पाई। आपको इस पर जय नहीं पाना है, उसने इस पर जय को पाया है। दूसरे मनुष्य को उनके खुद के फाटक पर जय पाना था, लेकिन आपको इस पर जय नहीं पाना है, इस पर पहले से ही जय को पाया गया है। उसने बीमारी के फाटकों पर जय पाया है। और उसने क्या किया जब उसने बीमारियों के फाटक पर जय पाई, कहते हुए, जो कुछ भी आप धरती पर मांगते हैं या आप कुछ भी धरती पर बांधते हैं, वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। हमें उस फाटक की चाबियों को देता है। उसने अभिलाषा के फाटक पर वचन के द्वारा जय पाई, और वो चाबियां थी, शत्रुओं को रोक देता है, और वो आप में से भाग निकलेगा। उसने सब पर जय पाई, हर एक बीमारी पर जय पाई। वो मृत्यु पर विजयी हुआ, और वो अधोलोक पर विजयी हुआ। वो मृत्यु और अधोलोक पर विजयी हुआ। वो जयवंत हुआ जिस पर वे दूसरे जय नहीं पा सके, क्योंकि वे स्वाभाविक बीज थे। यह आत्मिक बीज है। उसने कब्र के फाटक पर जय पाई, और वो तीसरे दिन हमारे धर्मीकरण के लिए जी उठा। और अब हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम केवल एक वारिस की नाई सीधे इसके अंदर चलकर जाते हैं, जीवन से बढ़कर। अब हम एक हारे हुए शत्रु से व्यवहार कर रहे हैं। बीमारी हारी हुई है, मृत्यु हारी हुई है, अधोलोक हारा हुआ है, हर एक चीज हारी हुई है। ओह प्रभु, काश मैं अपने आकार में दुगना होता था। अब हो सकता है मैं लगभग दुगना अनुभव करूं। हम एक हारे हुए के साथ प्रतिकार कर रहे हैं। कोई अचरज नहीं पौलुस कह सका जब वे उसके सिर को काटने के लिए एक खाके को बना रहे थे। उसने कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? मुझे दिखाओ कि तुम मुझे कहाँ छटपटाने और चीखने को लगा सकते हो। कब्र, तेरी विजय कहाँ है? और तुम सोचते हो कि तुम मुझे वहाँ पर गाड़ दोगे? मैं तुम्हें वहाँ पर एक खाली कब्र को दिखाऊंगा, और मैं उसी में हूँ। वह मुझे अंतिम दिनों में गिलाएगा, एक हारा हुआ शत्रु। अब्राहम का शाही बीज, वो स्वाभाविक बीज, उस बात की ओर इशारा नहीं कर पाता है, लेकिन शाही बीज जयवंत हो सकता है, क्योंकि वो हमसे पहले जाकर और हर एक फाटक पर हमारे लिए जयवंत हो चुका है। वह अब 2000 वर्षों के बाद हमारे मध्य में खड़ा हुआ है। वह सामर्थी जयवंत, न ही केवल उसने बीमारी पर जय पाई, वह बीमारी पर जय पा चुका है। उसने अभिलाषा पर विजय पाई, उसने हर एक शत्रु पर विजय पाई, उसने मृत्यु पर विजय पाई, उसने अधोलोक पर विजय पाई, उसने वह कब्र पर विजय पाई, और फिर से जी उठा, और 2000 वर्षों के बाद वो यहाँ हमारे बीच में खड़ा हुआ है। आज दोपहर को अपनी खुद की पहचान को दे रहा है, सामर्थी जयवंत, आमीन। वह अब भी जीवित यहाँ पर है, उसके प्रतिज्ञा को प्रमाणित करते हुए, अब्राहम का शाही बीज, ओ प्रभु, और वह शत्रु, और वह उसके शत्रु के फाटक पर जय पाएगा। उन बीजों के लिए वह यहाँ पर आज जीवित खड़ा है, ताकि खुद को प्रमाणित करे। किसे? वे जो पहले से ठहराए गए बीज हैं, जो इसे देख सकते हैं। उसने इस पर विजय पाई है। कौन? उसकी परीक्षा के बाद जो वचन की प्रतिज्ञा है, वे पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह में मोहर बंध हुए थे, ताकि उन्हें प्रमाणित करें। क्या? इब्रानियों 13:8 ऐसा ही होना है। वे वहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंध हुए थे। वो पवित्र आत्मा जिसे अब्राहम ने पहले से ही देख लिया था, विश्वास के द्वारा उसने इस पर भरोसा किया और अब हम इसे ग्रहण करते हैं उस प्रतिज्ञा की ओर वापस देखते हुए जो उसने कहा है। और यूहन्ना 14:12 इस अंतिम दिनों में प्रमाणित होता है उसके खुद के जी उठकर जयवंत होने के द्वारा, न ही कोई सिद्धांत लेकिन एक व्यक्ति मसीह वो जय पाने वाला, न ही मेरी कलीसिया, न ही मेरी बैप्टिस्ट कलीसिया या आपकी प्रेस्बिटेरियन मेथोडिस्ट या पेंटिकॉस्टल्स, न ही उनके द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। वह आज जीवित है, वह उस पर हमारे धर्मीकरण के लिए जी उठा है और क्योंकि वह जीवित है उसने कहा हम भी जीवित रहेंगे। मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं लेकिन हर एक वचन के द्वारा, न ही कुछ वचन के भाग के द्वारा, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए फिर भी वह जीवित हो जाएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? हर एक शत्रु के फाटक को ले लो। वह कैसे जय पा सकता है बोसवर्थ, जब परमेश्वर बोसवर्थ उस जय पाने वाले में था और इसी कारण से उसने कहा मेरी जीवन की सबसे खुशहाल की घड़ी ठीक अभी है। वह जानता था वह सामर्थी जयवंत है, उसका भरोसा उसके साथ विश्राम करता है। ओह प्रभु, अब हम गा सकते हैं, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, गाड़ा गया, मेरे पापों को दूर लेकर गया, जी उठकर उसने हमेशा के लिए बहुतायत से धर्मी किया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह वो महिमामय दिन उनके लिए जो हारे हुए दिखाई देते हैं। एडी पेरोनेट, मैं सोचता हूँ ऐसा था, वह उसके मसीह गीतों को नहीं बेच पाया, कोई भी उसके गीतों को नहीं चाहता था, उनका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था। ओह हारा हुआ और एक विश्वासी, एक दिन पवित्र आत्मा उस पर उतर कर आ गया और उसके शत्रु के फाटक ने उसकी रचना को स्वीकार नहीं किया। वो आत्मा उस पर आ गया और उसने कलम को उठाया, परमेश्वर ने उससे अभिषेकित गीत को लिखवाया। सब यीशु नाम की सामर्थ की जय जयकार करें, वे दूत गिरकर दंडवत करें, शाही मुकुट को सामने लाए और उसे ताज पहनाए जो सबका प्रभु है। अंधी फैनी क्रोसबाय एक दिन कहा तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कुछ, उसने अपने जन्म अधिकार को नहीं बेचा जैसे पेंटिकॉस्टल एल्विस प्रेसली ने किया, चर्च ऑफ क्राइस्ट के बून ने किया या जैसे रेड फोले ने किया, उनकी प्रतिभाओं को संसार के लिए बेच दिया, उन्हें तेज आरामदेह गाड़ियां मिली, उन्हें लाखों डॉलर मिले, सुनहरा गोल्ड रिकॉर्ड दिया गया, लेकिन फैनी क्रोसबाय उसके स्थान पर सच्ची बनी रही। वह पुकार उठी, मुझे छोड़ते हुए मत जाना, ओ दयालु उद्धारकर्ता, मेरी पुकार को सुन लेना, जब दूसरों को आप बुला रहे हैं मुझे छोड़ते हुए आगे मत जाना, आप मेरे सुख का स्तोत्र हैं, मेरे लिए जीवन से भी ज्यादा हैं, आपके अलावा मेरा धरती पर कौन है या स्वर्ग में आपके सिवा कौन है? उन्होंने कहा क्या हो यदि तुम अंधी रहती हो जब तुम स्वर्ग में जाती हो? उसने कहा मैं उसे किसी भी तरह से पहचान लूंगी। कहा तुम उसे कैसे पहचान लोगी? कहा मैं पहचान लूंगी। कहा श्रीमती क्रोसबाय तुम लाखों डॉलर कमा सकती हो? उसने कहा मुझे लाखों डॉलर नहीं चाहिए। तुम उसे कैसे पहचान लोगी? उसने कहा मैं उसे पहचान लूंगी और छुड़ाई हुई उसके पास ही मैं खड़ी रहूंगी। मैं उसे पहचान लूंगी। यदि मैं उसे नहीं देख सकती हूँ मैं उसके छिदे हुए हाथों से महसूस कर लूंगी। उसने उसके शत्रु के फाटक पर जय पाई थी। जी हाँ, यदि आप मसीह में हैं, उसने कहा यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाबी तुम चाहो मांगो, कौन से फाटक को तुम लेना चाहते हो, जो तुम चाहो मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम कोई भी शत्रु के फाटक को चाहो ले लो जो तुम्हारे सामने आता है, तुम अब्राहम के शाही बीज हो। किस प्रकार का फाटक तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है? यदि ये बीमारी है, आप इसके लिए जैवन से भी बढ़कर हैं, तब हम कह सकते हैं इस अनुग्रह से भरे हुए पुराने गीत को गाकर, हर प्रतिज्ञा जो किताब में है मेरी है, हर एक अध्याय, हर एक पद और वैसी ही दैविकता, मैं उसके दैविक प्रेम में भरोसा करता हूँ, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा जो किताब में है मेरी है। हम जैवन से भी बढ़कर हैं और अब्राहम का बीज शत्रु के फाटक पर अधिकार करेगा। जब वे कहते हैं ये चीजें नहीं हो सकती है, जब वे इसे एक शैतान कहकर बुलाना चाहते हैं या बालजबूल ऐसा ही कुछ, और परमेश्वर हर एक फाटक पर जय पाने और शत्रु को लेने के लिए निश्चित है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु होने पाए अब्राहम का बीज, मैं जानता हूँ वे इसे देखेंगे प्रभु, कैसे वह वचन गिर सकता है बिना उस सच्ची भूमि से टकराए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अब समझ जाएंगे। होने पाए हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना की पंक्ति पर आता है वह चंगा हो जाए। प्रभु यदि यहाँ पर अब भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब तक उनके अंगीकार को नहीं किया है, सार्वजनिक रूप से नहीं खड़े थे और मसीह के लिए नहीं खड़े थे, वे सारे संप्रदाय और ठंडे गुनगुने मरे चीजों को इनकार करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें आपसे दूर लेकर जाते हैं, और होने पाए वह अब खड़े रहें और कहें मैं उसे अपने उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करता हूं, तब आप उसके लिए उस दिन पर खड़े रहेंगे। जब हमने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, यदि वहाँ पर वे हैं जो कुछ समय की प्रार्थना के लिए खड़ा होना चाहेंगे, कहें मैं अब उसके लिए खड़ा होना चाहता हूँ जिससे वह मेरे लिए उस दिन पर खड़ा रहे उसकी दैविक उपस्थिति में। मैं आपसे पूछता हूँ और आपको उस मौके को देता हूँ कि आपका नाम जीवन की किताब में स्थापित हो यदि आप खड़े होंगे। मैं आपसे किसी भी कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे मसीह के पास आने के लिए कह रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर हैं और उसे नहीं जानते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। पुत्र यहाँ कोई और है जो कहे मैं अब उसके लिए खड़ा रहूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी बहन मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इस दोपहर को अपने स्थान को लेता हूँ, यह भले लोग पुरुष और महिलाएं खड़े हो रहे हैं, मैं इस दोपहर को अपने स्थान को लूंगा। और उस दिन पर जब डॉक्टर कहते हैं तो उस रोगी व्यक्ति का उसका लहू बह रहा है, उस पुरुष पर मृत्यु है या उस महिला के ऊपर मृत्यु है, और किसी सुबह आपको याद आएगा कि आप उस स्थान पर खड़े थे, आप अब उसके लिए खड़े हुए हैं। यदि आप मनुष्य के सामने मेरे लिए लज्जित होते हैं, मैं मेरे पिता और उन पवित्र दूतों के सामने तुम्हारे लिए लज्जित होऊंगा, लेकिन यदि तुम मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करते हो, उसे मैं पिता और उन पवित्र दूतों के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी बहन क्या वहाँ पर कोई बालकनी में कहीं तो है? ठीक अभी जब हम रुके हुए हैं उनमें से कुछ वहाँ और कुछ मुख्य सभा स्थल पर, तो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे वचन पर लेता हूँ मित्र। यदि वो वचन उपजाऊ भूमि पर गिरता है, जैसे वो छोटी स्त्री उस कुएं पर थी, वह समझ गई उसने स्वर्ग में प्रतिनिधित्व किया था, वहाँ से जगत बुनियाद डालने से पहले जब वो प्रकाश इस पर चमका उसने इसे पहचान लिया। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, यह एक साहसी। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, हो सकता है आपके जीवन में आपने महान चीजों को किया हो, आप सबसे महान चीज वो अब कर रहे हैं जो आपने अब तक की है अभी मसीह के लिए खड़े होकर। हमारे स्वर्गीय पिता आज की दोपहर को कुछ भूमि पर बीज गिर चुका है, हम देखते हैं कि जीवन फूटकर ऊपर आ रहा है, पुरुष और महिलाएं उनके पैरों पर खड़े हुए हैं और वे सब परमेश्वर की नजर में हैं, जो सर्वव्यापी सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी उन्हें देखता है। वे आपके हैं पिता, मैं इन्हें अब आपको विजय चिन्ह की नाई देता हूँ। होने पाए उनका जो यह अनुभव है जो अब वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जानते हुए जो उन्होंने किया है, यह जानते हुए इसका क्या अर्थ है कि वे खड़े हैं ताकि प्रभु के कुछ सताए हुओं के साथ खड़े रहें। होने पाए वे हमेशा ही सच्चे बने रहें, जब तक वे उस दिन आपकी उपस्थिति में खड़े न हो जाएं, तब वह मधुर आवाज उनसे कहेगी हाँ एक दिन बैटन रूज या एक छोटे से स्थान पर जिसे डेनम स्प्रिंग कहते हैं वह मेरे लिए खड़ा था, पिता अब मैं उसके लिए उस महिला या पुरुष के लिए खड़ा रहूंगा, इसे प्रदान करे प्रभु, वे आपके हैं यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे आपका स्थान लेने के लिए, परमेश्वर हमेशा ही। अब मेरे लिए एक बात को करें, अपने आसपास देखें वे पास्टर लोग कहाँ पर हैं, किसी से मिलें, उनसे बात करें। यदि आपका मसीह बपतिस्मा में अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है वैसा करें, अपने आप को अब विश्वासियों के बीच में लाएं, सच्चे विश्वासी, न ही ढोंगी विश्वासी लेकिन सच्चे विश्वासी। जब हम प्रार्थना करते हैं आइए इन रुमालों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता ये रुमाल यहाँ से अब बाहर भेजे जाएंगे, कहाँ मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ बूढ़े अंधे पिता यहाँ बाहर कहीं पर तो छोटे दलदल में बैठे हुए हों, इन रुमालों के आने के लिए रुके हुए हों, एक छोटी बच्ची वहाँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई हो, एक माँ पागलों की तरह खड़ी हुई हो, इन रुमालों के वापस आने का इंतजार कर रही हो। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके साथ जाएंगे और आज एक आपकी उपस्थिति का चिन्ह और हमारा विश्वास जो आप में है, जैसे हमने आपके वचन को प्रचार किया है, होने पाए। वह विश्वास जो अब्राहम में था और वह विश्वास उत्पन्न हुआ था और हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, होने पाए। इन रुमालों के साथ जाए और हरेक को चंगा करे जिस पर इसे रखा जाए। हम उन्हें यीशु के नाम से भेजते हैं, आमीन। अब कुछ समय के लिए इससे पहले हम प्रार्थना की पंक्ति बुलाएं और सर्व सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर, एक जो महान है, पूर्ण रूप से एक कृपा। दोस्तों, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और शायद जब हम नीचे जाएं, हो सकता है मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करूं, आप में से कुछ हो सकता है उस समय से पहले चले जाएं। आप जो कोई भी हो, कुछ समय पहले यदि आप खड़े नहीं हुए थे और आप निश्चित नहीं हैं, यदि आप एक कलीसिया के सदस्य हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे कुछ भला नहीं होना है। देखो, वह धनी युवा अधिकारी कलीसिया का सदस्य था, समझे, उसने यीशु से पूछा अनंत जीवन पाने के लिए वह क्या कर सकता है। उसने इसे स्वीकार नहीं किया, वह वहाँ से चला गया। उस जवान व्यक्ति के लिए इसे करना क्या ही मूर्खता की बात है, उसके स्थान को मत लेना। आपको याद है अंतिम बार वह कहाँ पहचाना गया था? एक कुछ समय के बाद वह फलने फूलने लगा, वह धनी होता गया, वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा इतना तक कि उसके खलियान फटने लगे, लेकिन तब हम पाते हैं उसकी अंतिम पहचान अधोलोक में हुई थी, वो अग्नि की ज्वाला उसे पीड़ा दे रही थी। नहीं, अपने साथ ऐसा मत होने देना, मसीह को स्वीकार करें। तुम युवा लोग और तुम युवा लड़कियां, युवा लड़के, बस आपके जीवन के मोड़ पर कृपा से करें, अपना भाई होने के नाते मेरी सुने। वह एक जो आपसे प्रेम करता है, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता हूँ यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ तो, बल्कि मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ। यदि आपके पास मेरे प्रति कुछ कहने के लिए अच्छी बात होती है तो आप इसे वहाँ मेरे बेटे को बता देंगे, मेरे बच्चों में से किसी एक को बताएंगे, मुझे बस मैं इसके बिना चला ही जाऊंगा। कोई भी माता पिता ऐसा करेंगे, ऐसे ही परमेश्वर करेगा, समझे। उसके लोगों से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आप कहेंगे आपने उन्हें क्यों डांटा, सच्चा प्रेम सुधार को करता है। यदि आपका बेटा वहाँ बाहर रास्ते पर बैठा हुआ है, आप कहते हैं तो ठीक है, वहाँ पर वो जूनियर बैठा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसकी छोटी सी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, वो वहाँ पर मारा जाएगा। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसे अंदर लेकर आएंगे और उसकी पिटाई करेंगे और आप उसे आज्ञाकारी बनाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर करता है, प्रेम सुधारक होता है और यही वह सच्चा प्रेम है। जब एक प्रचारक खड़ा होता है और आप महिलाओं को अपने बालों को कटवाने देता है और पैंट को और इत्यादि को पहनने देता है और वह आपको सुधार नहीं करता है, वहाँ पर कोई भी सच्चा प्रेम नहीं है और वह इसे नहीं बताएगा। और पुरुषों को 3 या 4 विवाह करने देता है और उन सारी बातों को, और वे इसके साथ बने रहते हैं, वहाँ पर कोई भी सच्चा प्रेम नहीं है। आपको एक कलीसिया से जोड़ते हैं और आपकी पीठ को थपथपाते हैं और कुछ मतों से घुटन देते हैं, बाद में यही वो सब है जो तुम्हें करना होगा। केवल पवित्र कलीसिया से जुड़ जाएं, वहाँ पर कोई भी प्रेम नहीं है, या वह मनुष्य या तो पूरी तरह से अपने आप में खो चुका है, वह नहीं देखता है। सच्चा प्रेम सुधारक होता है और आपको परमेश्वर के वचन की ओर वापस लाता है। यीशु की ओर देखो, कैसे उसने क्या किया, क्योंकि उसने उनसे प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया कि वो उनके स्थान पर मर गया, जब वे यहाँ तक उसके लहू के लिए पुकार रहे थे। अब वह महान पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ आप बस एक मिनट के लिए रुकें, मैं रुका हुआ हूँ जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर नहीं आ जाता है। इससे पहले कि हम आरंभ करें, मैं प्रचार करता आ रहा हूँ, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ हर एक जन, आप जहाँ कहीं भी हैं, इस इमारत में किसी भी स्थान पर कुछ मिनट के लिए प्रार्थना करें, कहें, प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके वस्त्र को छू लूं। यीशु ने कहा, आप जानते हो, जब उस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ उसने इसे शारीरिक रूप से इसे महसूस नहीं किया, लेकिन वह पीछे मुड़ा और जान गया कि वह कौन थी और उसने क्या किया था। वह आज की दोपहर वही यीशु है, एक महायाजक जिसे हमारे दुर्बलता की अनुभूति के द्वारा छुआ जा सकता है। क्या आप में से हर एक जन आप विश्वास करते हैं कि अब ये सच्चाई है? वह परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा को किया है फिर से एक बार, और हो सकता है वह इसे दिखाए कि हम सदम के दिनों में रह रहे हैं। कितने लोग इस इमारत में विश्वास करते हैं? केवल अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हम रह रहे हैं जैसे ये सदम में था। वो सारा तंत्र पूरी तरह से दूषित बन गया है, संसार के तंत्र, हर एक चीज, कलीसिया के सिद्धांत, राजनीतिक तंत्र, वहाँ कुछ भी नहीं है। राजनीतिक पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, वे तंत्र हर कहीं, हमारे अधिनायक सारे भ्रष्ट हो चुके हैं, कलीसिया उसी तरह बन गई है, परिवार उसी तरह से बन गए हैं, ये तो बस भ्रष्टता है सदोम। तब याद रखना, इससे पहले परमेश्वर ने आपको ले लिया है, तब याद रखें, उसने कहा कि वह खुद को मनुष्य के देह में प्रतिनिधित्व करेगा और वो वैसा ही करेगा जैसे उसने पहले सदोम में किया, इससे पहले कि वह प्रतिज्ञा का पुत्र दृश्य पर आए। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो उस एक को भेजेगा जो प्रतिज्ञा के पुत्र के आगे आगे जाएगा, जैसे उसने पहली बार किया था, जो अवगत कराएगा, और उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता है। मैं आपको नहीं जानता हूं, तो कुमारी थॉमसन, आपको स्त्री समस्या है और परेशानियां हैं, अब विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्या आप इसे विश्वास कर सकती हैं? क्या आप करेंगी? कुमारी थॉमस, आप विश्वास करती हैं कि वह आपको चंगा करेगा, तब अपने हाथों को ऊपर उठाएं। वहां पर एक महिला ठीक आपके पीछे बैठी हुई है, वह प्रार्थना कर रही है, उसे गठिया रोग है, एक ठीक उसके पास ही बैठी है, उसे पेट की समस्या है, वो भी प्रार्थना कर रही है। आप इससे चूक जाएंगी, आप ध्यान मत देना, आप यहाँ से नहीं है, आप मिसिसिपी से हैं, आप श्रीमान और श्रीमती स्ट्रीगर हैं। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यदि आप इसे विश्वास करते हैं, क्या आप करते हैं, तब आप इसे पा सकते हैं, तो ठीक है, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, जिससे कि लोग देखें यह आप हैं। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं, मैंने उन्हें मेरे जीवन में कभी नहीं देखा है। आपको विश्वास करना होगा मित्र, वह अपनी खुद की पहचान को दे रहा है। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आपने अपने सिर को क्यों हिलाया श्रीमान, और मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखा? जी हाँ श्रीमान, क्योंकि आपने ऐसा किया है। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूंगा। आप एक प्रकार से वृद्ध सज्जन ठीक यहाँ पर बैठे हुए मेरी ओर देख रहे हैं। उसने मेरी ओर देखा है, एक ऐसी सच्चाई के साथ उसने इसे विश्वास किया है।
You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसे एक दौरा पड़ा था, लेकिन आपकी जो मुख्य बात है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आवश्यकता है, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए मांग रहे हैं, यह सही है। यह सही है। यदि आप इसे विश्वास करती हैं, महिला, आप इसके अलावा रोजगार के लिए ढूंढ रही हैं, आप शायद जानती होंगी मैं परमेश्वर का नबी हूं या सेवक हूं। तुम्हारे दो ऑपरेशन हुए थे, इसने तुम्हें कमजोर कर दिया है, बहुत सी परिस्थितियां हैं, आत्मिक परेशानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ सही हो चुका है, आपका विश्वास आपको चंगा करता है। ठीक आपके पास बैठी हुई है, वो प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर देखें, उसने आपकी सुनी है और आपने उसे छुआ है। क्या आप नहीं जानती? लेकिन वह जानता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस बारे में प्रार्थना कर रही थी। क्या तुम पूरे हृदय से विश्वास करती हो? तुम्हें एक पिताशय की समस्या है, तुम प्रार्थना कर रही हो। क्या तुम विश्वास करती हो कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपको ठीक करेगा? आप श्रीमती स्मिथ हैं, यह सही बात है। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। देखो, वह खुद की पहचान को दे रहा है। यह क्या है? यह अब्राहम का बीज है, वो विश्वास जो अब्राहम के पास था। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसके वचन को साबित कर रहा है इन चिन्हों को दिखाते हुए। कौन कितने प्रार्थना कार्ड के लिए प्रार्थना की जानी है? अपने हाथों को ऊपर उठाएं जिनके पास कार्ड है। ओह, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम प्रार्थना की पंक्ति को आरंभ करें। आप देखें, क्या आप समझे क्या नहीं समझे? अब वह आत्मा न ही केवल यह चंगा ही नहीं करता है, वह केवल यह होने की अपनी पहचान को देता है। आपके पास्टर के पास बीमारों के लिए प्रार्थना करने का उसी तरह से अधिकार है। वे ऐसे नहीं करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके पास बिल्कुल वही अधिकार है। यह चिन्ह विश्वासियों के पीछे जाएंगे। अब मैं मेरे पास्टर मित्रों को यहाँ पर चाहता हूँ। क्या यह ठीक रहेगा श्रोतागण से उन्हें बुलाया जाए? यहाँ पर कितने पास्टर लोग हैं जो अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? यहाँ पर कितने सेवक हैं जो विश्वास करते हैं? ओह, आपका धन्यवाद। मैं सोच रहा था यदि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं, यहाँ पर आ जाएं, या मेरे साथ एक मिनट के लिए खड़े रहें, ठीक यहाँ पर नीचे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आप देखना कि चंगाई जगह लेगी। देखें कि क्या होता है।
To pray for the sick. I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
मैं आपसे चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर यहाँ पर ठीक दो पंक्ति को बनाए। मैं वहाँ नीचे बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ मिनट पर आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ विश्वास करने वाले पास्टर जो अपनी खुद की पहचान विश्वासियों की नाई देना चाहते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप एक पवित्र साफ सुथरे जीवन को जी रहे हैं। याद रखना, यहाँ पर देखें कि क्या बाहर आता है। मसीह के सुसमाचार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई ब्लेयर, मैं जानता हूँ आप वहाँ पर हैं। आप और भाई पैट, क्या आप उन दो पंक्तियों को बनाएंगे जिस तरह आप हमेशा बनाते हैं? यदि आप करेंगे, आप और भाई पैट, विश्वास करने वाले पास्टर जो विश्वास करने जा रहे हैं, अब देखो, यदि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा खुद की पहचान को दे सकता है उसके वचन के साथ, कितने लोग जानते हैं कि बाइबल में यीशु ने इसे कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वे बीमार पर उनके हाथ को रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। पास्टर, आप लोग यहाँ पर आए हैं ताकि आप खुद की विश्वासियों की नई पहचान को दें। आप देते हैं, आप विश्वासी हैं, क्या ऐसा नहीं है? नहीं तो आप यहाँ पर नहीं खड़े होते। अब यीशु ने क्या कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे वे जो विश्वास करते हैं। मैं आपके साथ एक विश्वासी हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। ये हमारे लोग हैं और हम लोग इस झुंड के ऊपर चरवाए हैं। मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ ताकि अब मैं अपने जाल को आपके साथ फैलाऊं, मेरे हाथ को आपके हाथ के साथ डालकर। और जब वे लोग यहाँ से गुजरते हैं, यदि आपके पास कुछ भी है जो मन में कुछ संदेह देता है, ठीक अभी यहाँ से बाहर निकल जाएं, इसलिए कि जब वे लोग यहाँ से होकर जाएं, तब हर एक जन वहाँ से गुजर रहा हो और हम उन पर हाथों को रखें, वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप अपने पूरे हृदय से अब विश्वास करते हैं? हर एक जन, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे जब वे यहाँ से होकर गुजरें? अपने हाथ को ऊपर उठाएं, कहें मैं प्रार्थना करूँगा। याद रखना, हो सकता है आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपकी बेटी हो, या बेटा, बहन या भाई हो। और यदि यह आपके कोई नहीं है, ये किसी और के हैं जो यहाँ इस प्रार्थना की पंक्ति से होकर गुजर रहे हैं, और क्या हो यदि यह उनके कोई है और वे कैंसर से मर रहे हो या कोई भयानक बीमारी हो, क्या आप हृदय की गहराई से ईमानदार नहीं होना चाहेंगे? निश्चय ही हम होंगे। अब मैं विश्वास करता हूँ आप कैसे अब ये यहाँ इस कतार में इस गलियारे पर उस तरफ से सामने खड़े हों, प्रार्थना के कार्ड के साथ उस तरफ पर सामने खड़े हों, वे सब जो दाएं भाग पर हैं, अब इस तरह से बाएं विभाग की ओर रोके रखें, यहाँ पर सब भीड़ हो जाएगी, आप देखना, आप नहीं जानते कैसे हम जो ये कर रहे हैं। तो ठीक है, वे सब जो इस भाग पर हैं, यहाँ पर खड़े हो जाएं। अब वे सब जो इस दाहिने हाथ के भाग पर हैं, तब इस तरफ आ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ नीचे आना है, घूम कर आना है। और आप कैसे जाएंगे, वे यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे भाई बॉर्डर्स? सीधे इस तरफ के दरवाजे से बाहर, यहाँ से सीधे घूमकर फिर से इस इमारत में आ जाएंगे। तो जब इस तरह के भाग को कुछ ही मिनटों में बुलाया जाएगा और वे सब खड़े हो जाएंगे। और आइए अब देखेंगे, अब क्या? तो ठीक है, जो लोग इस भाग पर हैं, यहाँ पर इस तरफ से घूम जाएं, अपने हाथों में प्रार्थना के कार्ड पकड़े रहें और इस तरफ से चले जाएं, और आप जो बालकनी में हैं, ठीक नीचे आकर वहाँ कतार लें, अंत पर उनसे मिलें। अब ये जो बाएं हाथ का भाग है, आप बाएं हाथ की ओर चले जाएं, और तब आप देखें एक पंक्ति को बनाकर और वापस पीछे उस तरफ जाएं, पीछे मुड़े, उस तरफ मुड़े, समझे? और आप उस पंक्ति के सीधे पीछे पीछे घूमते हुए जाएं, और बाद में हम किसी तरह की उलझन को नहीं चाहते हैं। और तब आप जो ऊपर बालकनी में हैं, आप अपने स्थानों को सीधे उन गलियारों में बनाएं, और तब ठीक उसके साथ मिल जाएं जब वे इसमें से होकर आते हैं। अभी केवल पीछे से चलना आरंभ करें, हर एक जन सीधे पीछे चलकर जाएं। जब आप यहाँ इस पंक्ति से सीधे यहाँ घूमकर नहीं मिलते हो, केवल सीधा घूमकर यहाँ ऊपर आ जाएं, बस चलना आरंभ करें सीधे घूमकर और ठीक यहाँ इस पंक्ति पर आ जाएं। ठीक अभी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? यह एक ऐसा समय होने जा रहा है जहां कुछ तो बात जगह लेना अवश्य है। तो ठीक है, अब यह ठीक है, सीधे पीछे उस तरफ से घूम कर जाएं और सीधे उस पंक्ति में आ जाएं, इस तरह से ठीक इस गलियारे में घूम जाएं। अब इसी तरह से करें। आप लोग हरेक अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और यह सभा मेरे साथ साथ प्रार्थना करेगी कि आप चंगे होने जा रहे हैं। अब केवल विश्वास रखें और ना ही ठीक घूम कर आ जाएं, वहाँ सबसे पीछे से होते हुए सीधे घूम कर आ जाएं और पीछे यहाँ पर इस पंक्ति से जुड़ जाएं, सीधे घूमते आ जाएं, एक बड़ी पंक्ति को बनाएं, उस तरह से होते हुए सीधे घूम कर आएं, ऐसे ही हर एक जन प्रार्थना में रहें। अब वास्तव में विश्वास रखें, बस भीड़ की ओर ध्यान न दें। अब याद रखें, यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा हम ढाके गए हैं, उस पर भरोसा रखते हुए, ताकि हम उसे आदर दें जो वह हमारे बीच में कर चुका है, उसके वचन में विश्वास रखने के द्वारा। यह अच्छा है, अब यह अच्छा होगा। मैं सोचता हूँ कि वह पंक्ति बस अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अब जबकि वे सब वहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ अब हर एक व्यक्ति जो इस इमारत में है अपने सिर को झुकाए। प्रभु यीशु, यह बहुत ही जल्दी होगा, उस निर्णय को ठीक अभी लिया गया है। क्या विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर हैं? क्या हम आपसे प्रेम करते हैं? हमारे पास क्या इतना विश्वास है प्रभु कि हम क्या मांगने जा रहे हैं? यह लोग एक पंक्ति में खड़े रहने के द्वारा खुद की पहचान को दे रहे हैं। प्रभु, इसे व्यर्थ में जाने नहीं देना, इसे होने देना प्रभु कि वे यहाँ से ऐसे होते हुए गुजरे जैसे हर एक मसीह के नीचे से होते हुए गुजरे थे, क्योंकि हम जानते हैं वो यहाँ पर है, और हम प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी चंगाई को पाएंगे। मुझे पक्का है कि यहाँ तक आने वाले हफ्तों और हफ्तों में ये लोग अपने पास्टरों के पास जाएंगे, स्त्रियाँ जिन्हें महिलाओं की समस्या थी, पेट की समस्या थी, और पुरुष ग्रंथि की समस्या, सब प्रकार की तकलीफ, वे चंगे हो जाएंगे, कहते हुए तुम जानते हो वो चीज मुझे अभी छोड़कर चली गई है, क्योंकि वे आपकी उपस्थिति में हैं। होने पाए वे अब यहाँ से होते हुए आएं और उस बात को खींच लें जिसके लिए आप मरे थे। वे अब्राहम के बीज हैं और आपने उनके लिए जय को पाया है। होने पाए वे आकर और उसे ग्रहण करें जो आपने उन्हें दे दिया है। और शैतान, तू इस हफ्ते में पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुका है, इतना तक कि तू जानता है कि तू एक हारा हुआ जीव है। यीशु मसीह ने उस कलवरी पर तुझे हराया है। वह तीसरे दिन हमारे धर्मीकरण के लिए जी उठा है और वह आज हमारे बीच में अब खड़ा हुआ है और हमारा विश्वास उसकी ओर देखता है और तुझसे दूर है और यह हर एक चीज जो तूने की है। यीशु मसीह के नाम में इन लोगों को छोड़ दे। हमने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे हमारे गुरु ने हमें करने की आज्ञा दी है। आप में से कितने लोग इस कतार में से होकर गुजरे हैं, विश्वास किया है, आप चंगे होने जा रहे हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं, मैं भी अपने हाथों को आपके साथ उठाता हूं। हम वहां पर अंत में क्या कर रहे थे जब सेवकों का झुंड वहां पर था, उनमें से बहुत से लोग वे बीमार थे, मैं इसे जानता था, लेकिन वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी सभा के लोगों को इसमें लेकर आए कि वे अंदर हैं या बाहर हैं, यही वे सच्चे चरवाहे होते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का उनका कारण है और हमने हमारे हृदय और जाल की डोर को बांध लिया और हमारी प्रार्थनाएं एक साथ मिलकर हुई हैं। यीशु उन्हें भी चंगा करे और उन्हें एक मजबूत चरवाहे बनाए, प्रभु के वचन में मजबूत बनाए। होने पाए परमेश्वर मेरे भाई लोग, होने पाए वह आपके हृदय की सारी इच्छाओं को दें, होने पाए आप सारे दिनों में उसकी सेवा करें और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में हो ताकि आप इस भले लोगों के झुंड की सेवा करें। होने पाए यीशु मसीह जो हमारे साथ हर समय से रहा है और सदा आपके साथ हो, होने पाए वह खुद को आपके लिए और ज्यादा प्रकट करे, जो वो हमेशा इससे पहले रहा है उससे ज्यादा। आप लोग, आप में से कुछ लोग जो अपाइज थे, आप हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ भी फर्क नहीं दिखे, आपको शायद कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। देखो अब्राहम ने क्या किया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जो भी हो या वो नहीं जिसे आप देख रहे होते हैं। आप अपने लक्षणों को न देखें, उसकी ओर देखें कि उसने क्या कहा है। यदि आप कहते हैं मैं अभी भी दर्द को महसूस करता हूं, इसका इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, आपने वही किया है जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। देखो उस तरफ मत देखना, उसे देखना जो उसने कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं विश्वास करता हूं, क्या आप नहीं करते? अपने पूरे हृदय के साथ इसे विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक कि मैं आपसे फिर से नहीं मिलता हूं, मेरी आपके लिए प्रार्थनाएं हैं और रात अधिक अंधेरी न हो, बारिश बहुत अधिक न पड़े, मैं आपके लिए प्रार्थना में रहूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करना जब तक हम वापस नहीं मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब पास्टर आकर बोलेंगे, देखें।